गोवा के लाइफ केयर हॉस्पिटल के वीवीआईपी वार्ड में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। डॉक्टर अंदर वसुधा को ट्रीट कर रहे थे तो वहीं बाहर अभिमन्यु और इशिका थे। अभिमन्यु दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। उसकी नज़रें वसुधा के प्राइवेट रूम की तरफ थी तो वहीं इशिका कमरे के पास वेटिंग एरिया में लगे काउच पर बैठी थी। अभिमन्यु के हाथों की मुट्ठियाँ बंधी हुई थी। वसुधा ने उन दोनों के तलाक लेने की बात को सुन लिया था और उसी के चलते उनकी तबीयत खराब हो गई थी। अभिमन्यु तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया था। लगभग एक घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने अभिमन्यु की तरफ देखकर सीरियस टोन में कहा, पेशेंट अभी खतरे से बाहर है, लेकिन मैंने आपको समझाया था मिस्टर राजवंश, उनकी उम्र नहीं रही है किसी भी तरह का तनाव झेलने की। आपको उन्हें स्ट्रेस और टेंशन से दूर रखने की जरूरत है। इशिका ने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। इतने दिनों में पहली बार उसने अभिमन्यु के चेहरे पर परेशानी के भाव देखे थे। वो डॉक्टर से ऐसे शब्द नहीं सुनना चाहता था कि वो खतरे से बाहर है। अभिमन्यु ने अपनी तरफ से वसुधा की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इशिका ने अभिमन्यु के हाथों की तरफ देखा तो वो हल्के कांप रहे थे। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसने अपनी शर्ट का एक बटन खोला और टाई को लूज कर लिया था। वो काउच पर आकर बैठा, तभी उसे अंदर से नर्स की आवाज़ सुनाई दी। मैडम, होश में आने के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। नर्स की बातों से साफ था कि वसुधा को होश आ गया है। अभिमन्यु जल्दी से काउच से खड़ा हुआ और वसुधा के कमरे में चला गया। उसके पीछे पीछे इशिका भी अंदर गई। उन दोनों की अंदर आते ही वसुधा ने उनकी तरफ सूनी नज़रों से देखा। वसुधा ने इशिका से बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, बहू मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बुरा सपना देखा था, जहां तुम और ये बच्चा तलाक लेने जा रहे थे। वो एक सपना ही था ना, तुम दोनों तलाक नहीं ले रहे हो ना? वसुधा को अभी भी ये डर सता रहा था कि इशिका और अभिमन्यु अलग हो जाएंगे। इशिका जवाब में कुछ नहीं बोली। वो झूठ बोलकर वसुधा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। तभी अभिमन्यु ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये सच नहीं है। तो तुम दोनों तलाक नहीं ले रहे हो ना? वसुधा ने अभिमन्यु की तरफ देखकर एक बार फिर पूछा। उनकी आवाज़ भारी हो रही थी। हाँ, हम तलाक नहीं ले रहे हैं, मैं बस इससे मिलने के लिए आया था। आप जानती हैं, इस तरह कपल्स एक दूसरे से छुपकर मिलते रहते हैं, अभिमन्यु ने बहाना बनाकर कहा। ठीक है, फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट और आईडी मुझे दे दो, वसुधा बोली। वो अपनी तसल्ली के लिए वो सब करना चाहती थी जिससे अभिमन्यु और इशिका अलग ना हो। अभिमन्यु उन्हें तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता था। उनकी खुशी के लिए उसने कहा, वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कल तक आपको लाकर दे दूंगा, आप अपने पास ही रख लीजिएगा। इशिका इन सब में बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी तो वसुधा को शक हो रहा था। उसने इशिका की तरफ देखकर फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, बहू ये लड़का सच तो बोल रहा है ना? तुम दोनों तलाक नहीं ले रहे हो ना? नहीं, इशिका ने जवाब में इतना ही कहा। डॉक्टर ने थोड़ी देर पहले ही वसुधा को टेंशन लेने से मना किया था, इसलिए इशिका चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता पाई। इशिका के कहने के बाद ही वसुधा को तसल्ली हुई और उनके चेहरे पर हल्की सी छोटी मुस्कुराहट थी। हालांकि वसुधा की देखभाल करने के लिए नर्स अवेलेबल थी, फिर भी अभिमन्यु और इशिका ने वहीं पर रुकने का डिसीजन लिया। वसुधा को नींद नहीं आ रही थी तो वो अभिमन्यु और इशिका की तरफ देख रही थी। इशिका बोर होने की वजह से अपने मोबाइल में लगी हुई थी। इशिका ने मन ही मन कहा, ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? दिशांक थी, कुछ नहीं कर पा रहा। अगर यही चलता रहा तो मैं अल्जाइमर मेडिसिन पर जो रिसर्च कर रही हूँ वो कभी पूरी नहीं हो पाएगी। पता नहीं वो बायोमेडिकल पेपर्स मुझे कब हासिल होंगे। इशिका का काम नहीं होने की वजह से वो थोड़ा इरिटेट हो रही थी। तभी उसके पास अभिमन्यु का मैसेज आया। इशिका ने उसकी तरफ घूर कर देखा। वसुधा के पास होने की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रहा था। अभिमन्यु ने इशारे से इशिका को मैसेज चेक करने के लिए कहा। इशिका ने मैसेज चेक किया तो अभिमन्यु ने लिखा था, दादी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, जब तक उनकी कंडीशन स्टेबल नहीं हो जाती हम डिवोर्स को पोस्टपोन कर देते हैं। इशिका उसे मना तो करना चाहती थी पर वसुधा की हालत देखते हुए वो कुछ नहीं कह पाई। उसने ओके लिखकर रिप्लाई भेज दिया था। वैसे भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन हो चुके थे तो तलाक कभी भी हो क्या फर्क पड़ता था? पेपर साइन हो जाने के बाद ये मेरे मामलों में टांग नहीं अड़ाएगा और ना ही मेरी किसी भी प्रॉपर्टी या बाकी चीज़ों पर इसका हक होगा। थोड़े टाइम रुक जाती हूँ दादी के लिए, इशिका ने मन ही मन कहा। इशिका के जवाब देते ही अभिमन्यु ने फिर से पूछा, क्या तुम्हारी कोई डिमांड है जो मैं पूरी कर सकता हूँ? जब दादी ठीक हो जाए तो जल्दी से जल्दी तलाक दे देना,
मेरी यही डिमांड है जो सिर्फ तुम ही पूरी कर सकते हो। इशिका ने रूडली जवाब दिया और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर मुंह बनाया। अभिमन्यु ने कि उसे अजीब नजरों से घूरा। वो मन ही मन बोला, अजीब लड़की है, इसे इतना एटीट्यूड किस बात का है। मैं सामने से हेल्प ऑफर कर रहा हूँ लेकिन इसे अपने ईगो में रहना है। मुझे क्या, करती रहे अपनी वही पार्ट टाइम जॉब्स। वसुधा ने उन दोनों के चेहरे की तरफ देखा जो एक दूसरे को खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे। उनका इस तरह झगड़ा होना उनके लिए अच्छा नहीं था। यही सोचकर वसुधा ने अभिमन्यु से हल्की सख्त आवाज में कहा, बच्चे मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू राजवंश एम्पायर में काम करे, इसके लिए तुम अपनी कंपनी में एक सूटेबल जॉब ढूंढ सकते हो। उसके बाद वसुधा मन ही मन बोली, दोनों पूरे दिन एक साथ रहेंगे तो अपनी लड़ाई झगड़े को भूलकर फिर से साथ आ जाएंगे। मुझे अच्छे से पता है ये बच्चा मेरी बात कभी नहीं टालेगा। वसुधा की जो हालत थी उसके बाद अभिमन्यु उसकी कोई भी बात वैसे भी मना नहीं कर रहा था। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, ठीक है मैं इसके लिए काम देख दूंगा। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और इशिका की तरफ देखकर अपने मन में कहा, दादी की तबीयत के लिए इस लड़की के लिए और ना जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। अच्छे से ब्लैकमेल कर रही हैं दादी आप मुझे। वो जानता था कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई है। पूरी रात अभिमन्यु उनके पास रहने वाला था तो वो अपनी हर जायज नाजायज जिद उससे पूरी करवाने वाली थी। अभिमन्यु के हाँ कहते ही वसुधा ने कहा, तुम मेरी बहू को क्या काम करने को दोगे, देखो उसे एक अच्छी जॉब देना। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, ठीक है तुम रहने दो, ये भी मैं सोच लूंगी, बस तुम वही करना जो मैं कह रही हूँ। बहू कल तुम इसके साथ काम पर जाओगी और ऑफिस में इसके साथ रहोगी। ओके दादी, इशिका ने जवाब दिया। उस कमरे में हो रही सारी बातें काफी फॉर्मल थी, खासकर अभिमन्यु और इशिका के बीच में। इशिका ने गहरी सांस ली और अपने मन में कहा, अजीब मुसीबत है, अब इसे पूरे दिन झेलना पड़ेगा। वैसे राजवंश एम्पायर में काफी सारा डेटाबेस मौजूद होगा, मुझे जो पेपर्स चाहिए वो मुझे राजवंश एम्पायर में मिल सकते हैं। इस बीच पृथ्वी वहां पर पहुंचा, उनकी एक मीटिंग लाइनअप थी। अभिमन्यु उसे मना करना चाहता था पर इशिका वहां पर मौजूद थी तो अभिमन्यु वहां और नहीं रुकना चाहता था। वो जानता था कि पूरी रात वसुधा उससे कुछ ना कुछ मनवाती रहेगी। अभिमन्यु वहां से खड़ा हुआ और वसुधा से बोला, दादी मेरी एक मीटिंग है मुझे जाना होगा। वसुधा ने उसे जाने की इजाजत दे दी थी। बाहर आते ही पृथ्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, अब समझ आ रहा है इस लड़की को तलाक की इतनी जल्दी क्यों थी। काफी प्लान किया है सर इसने, मैं बता रहा हूँ, आपके सामने इसने पेपर्स तो साइन कर दिए और फिर जानबूझकर अपने पीछे दादी को लेकर आई। इसका इरादा ही नहीं है आपसे तलाक लेने का।
कोई तरीका नहीं है उससे पीछा छुड़ाने का पृथ्वी, अब तो दादी ने उसे ऑफिस में काम देने का भी बोल दिया है, अभिमन्यु ने लाचारी से कहा। सर आपको मना कर देना चाहिए था, ऑफिस में आने के बाद कहीं उसने हमारे सीक्रेट फाइल्स के साथ छेड़खानी की तो, जरूर इसके लिए भी उसने दादी को बहकाया होगा। मैंने आज तक काफी तेज और शातिर लड़कियां देखी हैं लेकिन सब इससे नीचे ही हैं, पृथ्वी ने कहा। वो इशिका के खिलाफ अभिमन्यु को अच्छा खासा भड़का रहा था। ठीक है वो हमारी आंखों के सामने रहेगी तो उसके बारे में पता लगाने में और आसानी रहेगी, अभिमन्यु ने जवाब दिया। वो इशिका के सस्पिशियस लाइफ के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक था। अभिमन्यु जानना चाहता था क्या वाकई इशिका इस पूरे मामले में मासूम है या पूरी प्लानिंग के साथ उसके पास आई है। दूसरी तरफ इशिका और वसुधा साथ में बैठी हुई थीं। अभिमन्यु के जाते ही उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी थीं। बातें करते हुए अचानक वसुधा ने कहा, बहू मुझे एक राज की बात याद आई है और मुझे तुम्हें बताना है इससे पहले कि मैं वो भूल जाऊं। कौन सा राज दादी, क्या आपको याद आ गया है कि मेरी और अभिमन्यु की शादी कैसे हुई थी, प्लीज मुझे बताइए, इशिका ने काफी बेचैन होकर पूछा। वो उम्मीद भरी नजरों से वसुधा की तरफ देख रही थी। आज उसकी और अभिमन्यु की शादी का राज शायद खुलने वाला था। आज के लिए इतना ही, चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा, अगले पार्ट पर मिलते हैं। पता नहीं कौन से जन्म में अभिमन्यु को इशिका पर यकीन होगा, ऊपर से पृथ्वी भी भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है।